आगे सबक देखिए भाई। इतबारन लिस्सिफतिल असलियति ऐ इन्नमा खालफ सिबवैहिल अखफश लिअजलि इतबारिहिल वस्फियतल असलियत बादत तनकीर فإنه لما زالت العلمية بالتنكير لم يبق فيه مانع من اعتبار الوصفية فاعتبرها وجعله غير منصرف للصفة الأصلية وسبب آخر بھئی گزشتہ اسباق میں ایک ضابطہ ذکر کیا تھا صاحب کافیہ نے کہ وہ اسباب مناصرف جن کے ساتھ عالمیت مؤثر ہو کر جمع ہو جائے جب ان کو نکرہ کر دیا جائے یعنی ان سے عالمیت کو ختم کر دیا جائے تو وہ منصرف ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد احمر جیسے لفظوں کا اس سے استثناء کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ احمر جیسے الفاظ میں امام سیبوی نے اختلاف کیا ہے امام اخفش سے بھائی احمر سے مراد ایسے الفاظ ہیں جو عالمیت سے پہلے بھی غیر منصرف تھے اور ان میں ایک سبب وصف تھا دوسرا سبب کوئی اور سبب بھائی تو ایک سبب وصف تھا پھر جب اس کو علم بنایا گیا تو وصفیت چلی گئی کیونکہ وصفیت اور عالمیت دونوں جمع نہیں ہو سکتے وصف دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر اور علم دلالت کرتا ہے ذات معین پر یا یوں کہو کہ وصف دلالت کرتا ہے عموم پر اور علم دلالت کرتا ہے خصوص پر اور ایک لفظ میں ایک ہی وقت میں عموم بھی ہو اور خصوص بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا تو جب علمیت آئی تو وصفیت ختم ہو گئی اب یہ لفظ احمرہ علمیت سے پہلے بھی غیر منصرف تھا علمیت کے وقت بھی غیر منصرف ہے لیکن جب علمیت ختم کریں گے تو امام اخفش ضابطے کے مطابق فرماتے ہیں کہ یہ منصرف ہو جائے گا کیونکہ جس سبب کے ساتھ بھی علمیت مؤثر ہو کر جمع ہو جب اس علمیت کو ختم کرتے ہیں تو وہ لفظ کیا بن جاتا ہے منصرف لیکن امام سیبوی اختلاف کرتے ہیں یہ احمرہ جیسے الفاظ میں اور فرماتے ہیں کہ علمیت ختم کر دیں تو بھی یہ لفظ غیر منصرف رہے گا تو وہ زوال علمیت کے بعد بھی وصفیت اصلیہ کا اعتبار کرتے ہیں کہ یہ اصل وضع میں چونکہ وصف تھا لہذا اب علمیت ختم کر دیں گے تو اس وصفیت اصلیہ کا اعتبار کریں گے وہ اس کو قیاس کرتے ہیں اسود اور ارقم پر اسود اور ارقم آپ نے پڑھا تھا کہ اسود عربی زبان میں ہر کالی چیز کے لیے وضع تھا لیکن پھر ان پر اسمیت غالب آئی اور یہ کالے رنگ کے سانپ کے لیے اسم بن گئے کثرت استعمال کی وجہ سے بھائی تو اب اسود کا لفظ جب بغیر قرینے کے بولا جائے تو اس سے کالے رنگ کا سانپ مراد ہوتا ہے اور یہ اسود کا لفظ غیر منصرف ہوتا ہے اگرچہ اس کے اندر سے وصفیت ختم ہو چکی ہے غلبہ اسمیت آ چکا ہے لیکن پھر بھی یہ وصفیت اصلیہ معتبر ہے تو اسود میں ایک سبب وزن فعل ہے اور دوسرا وصفیت اصلیہ تو جیسے اسود اور ارقم کے اندر زوال وصفیت کے باوجود اس کے اندر وصفیت اصلیہ کا اعتبار کیا گیا تو اسی طرح امام سیبوی جو ہیں احمرہ جیسے لفظوں میں زوال وصفیت کے باوجود جب علمیت ختم کرتے ہیں تو اس میں پھر وصفیت اصلیہ کا اعتبار کرتے ہیں اور اس کو غیر منصرف کہتے ہیں تو اس کے اندر وصفیت اصلیہ کا امام سیبوی اعتبار کرتے ہیں زوال وصفیت کے بعد بھی اور پھر صاحب جامی نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ وہ جو وصفیت ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے خفی نہیں ہونی چاہیے قبل العالمیت قبل العالمیت وہ وصفیت ظاہر ہونی چاہیے خفی نہیں ہونی چاہیے لہذا سکران اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے اب سکران کا کیا معنی ہے جو مدہوش ہے جو نشے میں ہے اور اس کے اندر قبل العالمیت بھی وصفیت ظاہر ہے کیونکہ سکران کا کیا معنی مدہوش وہ شخص جو نشے میں ہے تو قبل العالمیت بھی یہ غیر منصرف تھا ایک سبب اس میں وصف ہے اور دوسرا الف نون مزیدتان پھر اس کو علم بنایا گیا تو وصفیت چلی گئی اب دو سبب کیا ایک وصف اور ایک الف نون مزیدتان फिर इसके बाद इससे अलमियत खत्म कर दी गई, तो अब भी इमाम सीबोवे के नजदीक ये गैर मुनसरिफ है। एक सबब वो अलिफ नून मजीदातान है और दूसरा वो वसफियत असलिया है। तो देखो वसफियत असलिया का वो एतबार करते हैं जवाल वसफियत के बाद भी, अलबत्ता वो वसफियत कबल आलमियत जाहिर होनी चाहिए। लिहाजा ताकीद वाला अफालो निकल गया, ताकीद वाला अफालो निकल गया। जैसे अजमाऊ, भाई अजमाऊ असल में तो ये जमईयत के लिए वजा था, ये किसके लिए वजा था? जमईयत के लिए वजा था, सिफत था, लेकिन फिर बाद में ये ताकीद के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। अब अजमाऊ का लफ्ज अरबी जुबान में ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये गैर मुनसरिफ है। एक सबब क्या? वजन फेल। और दूसरा सबब क्या? वसफियत असलिया। फेल हाल तो वसफ नहीं, लेकिन असले वजह में क्या था? वसफ। तो गोया इस वक्त इसमें वसफियत जाहिर नहीं है। कौन सी वसफियत का एतबार कर रहे हैं? वसफियत असलिया का। तो अब इसके अंदर वसफियत फिलहाल जाहिर नहीं है। अब यह अजमाऊ किसी का नाम रख दिया गया, तो अब यह गैर मुनसरिफ है। अब कौन से दो सबब हैं? एक आलमियत, एक वजन फेल। अब वसफियत का एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि वसफियत और आलमियत दोनों मुतजाद हैं। भाई फिर इसके बाद इससे आलमियत को खत्म कर दिया, तो बिल इतफाक मुनसरिफ है, यानी जाब्ते के मुताबिक है, क्योंकि आलमियत से कबल इसके अंदर वसफियत जाहिर नहीं थी। आलमियत से कबल यह ताकीद के लिए था, वसफ के लिए नहीं था। इसी तरह अफालु तफजील जो है उसके इस्तेमाल के तीन तरीके हैं। कभी वो इस्तेमाल होता है मिन के साथ, जैदुन अफजलु मिन आमरीन, और कभी ये अलिफ्लाम के साथ इस्तेमाल होता है जैसे जैदुनिल अफजलु, और कभी इजाफत के साथ इस्तेमाल होता है जैसे जैदुन अफजलुल कौमी। तो ये तीन तरीके हैं। इन तीन तरीकों में से सिर्फ मिन की बात इन्होंने यहां पर की, मीन की बात की। ये मीन याद रखो कभी लफ्जों में जिक्र होता है और कभी ये मीन मुकद्दर होता है। जैसे अल्लाहु अकबर, देखो अल्लाहु अकबर के अंदर ये जो अकबर है ये इसमें तफजील है, लेकिन न इस पर अलिफ्लाम है, न इसकी इजाफत हो रही है, और न इसके साथ मीन है। तो उसका जवाब उलमा देते हैं कि मीन यहां मुकद्दर है। अय अकबरु मीन कुल्लि शयइन, अल्लाह की जात तमाम चीजों से बड़ी है। तो मालूम हुआ ये मीन कभी लफ्जों में होता है और कभी मुकद्दर होता है। तो जब मीन लफ्जों में हो फिर तो इस अफ़अलु तफ़ज़ील के अंदर वसफियत का माना जाहिर है। अब ये किसी का नाम रखा जाए, मसलन असगरु मिन आमरीन, मैंने किसी का नाम रख दिया, अब इसके साथ मीन तफजीलिया लफ्जों में मौजूद है जिससे पता चल रहा है कि यह सिफत के लिए है। तो असगरु मिन आमरीन ये कबल आलमियत भी गैर मुनसरिफ। इसमें दो सबब कौन से? एक वजन फेल और एक वसफियत। फिर उसके बाद इसको आलम बनाया गया, तो अब कौन से दो सबब हैं? एक आलमियत है और एक वजन फेल है। फिर इसको नकेरा बना दिया गया, तो फिर बिल इतफाक यह गैर मुनसरिफ है, क्योंकि अब इसके साथ मीन है तो इसके अंदर वसफियत वाला माना जाहिर है। तो कबल आलमियत भी असगर मीन आमरीन, ये असगर लफ्ज क्या था? गैर मुनसरिफ। आलमियत के साथ भी क्या था? गैर मुनसरिफ। और बादल आलमियत भी क्या है? बिल इतफाक गैर मुनसरिफ है, क्योंकि ये मीन तफजीलिया बतला रहा है कि इसमें वसफियत वाला माना है, तो उसका एतबार किया जाएगा जवाल आलमियत के बाद भी। बात समझ में आ गई। तो यहां ये जो अफालु तफजील की बात की कि ये मीन के साथ हो तो फिर बाद में भी ये गैर मुनसरिफ रहेगा, लेकिन अगर मीन के बगैर सिर्फ असगर में किसी का नाम रख देता हूं तो कबल आलमियत तो ये गैर मुनसरिफ, आलमियत के वक्त भी ये गैर मुनसरिफ, लेकिन बादल आलमियत ये बिल इतफाक मुनसरिफ होगा। इसलिए क्योंकि इसके अंदर आलमियत से कबल भी वसफियत के माना जाहिर नहीं थे। इसके अंदर आलमियत से कबल भी वसफियत के माना जाहिर नहीं थे, क्योंकि आलमियत से पहले इसके साथ मीन नहीं था, मीन तफजीलिया जब नहीं था तो ये है तो इसमें तफसील, लेकिन इसमें वसफियत वाला माना जाहिर नहीं। ये उस इसम के मानिंद हो गया जो अफालु वजन पर आता है और इसमें महज होता है, उसमें वसफ वाला माना नहीं होता। जैसे अफकल, भाई अफकल देखो, अफकल का माना है लोगों की जमात, इसी तरह इसका माना है कपकपी, भाई सर्दी की वजह से किसी पर कपकपी तारी हो जाए, तो ये इसमें महज है, इसमें वसफियत वाला माना नहीं। तो जब अफालु तफजील बगैर मीन के हो तो वो भी किसकी तरह है, इसमें महज ही की तरह समझें उसको, उसमें वसफियत वाला माना जाहिर नहीं। तो ये अफालो ये कबल आलमियत गैर मुनसरिफ है, जब फिर किसी का नाम रखेंगे तब भी गैर मुनसरिफ है, लेकिन जब आलमियत खत्म करेंगे तो यह बिल इतफाक मुनसरिफ हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ मिन तफजीलिया नहीं है। कबल आलमियत भी इसके अंदर वसफियत जाहिर नहीं थी बल्कि खफी थी, ये किसके दर्जे में था, ये इसमें महज के दर्जे में था। भाई बात समझ में आ गई, और मैंने बतलाया कि ये अफालु तफजील जो मीने तफजीलिया से खाली हो, इसका ये माना ना समझें आप कि अलिफ्लाम या इजाफत के साथ हो, नहीं, बल्कि वही अफालु तफजील जिसमें मीन मुकद्दर हो उसकी बात हो रही है, क्योंकि अलिफ्लाम और इजाफत ये दोनों तो आलमियत को खत्म कर देते हैं। तो इन्होंने जो कहा ना कि वो अफालु तफजील जो मीने तफजीलिया से खाली हो, तो आप ये समझें कि शायद इसका माना है कि अलिफ्लाम या इजाफत के साथ हो, नहीं नहीं उसकी बात यहां नहीं हो रही भाई, इसलिए क्योंकि आगे चलकर एक आध सफे बाद साहिबे जामी आपको बतलाएंगे कि ये अलिफ्लाम और इजाफत ये अलमियत के खिलाफ हैं, ये जब अलम पर दाखिल होते हैं तो अलमियत जायल हो जाती है भाई, क्या हो जाती है, जायल हो जाती है, क्योंकि क्योंकि अलिफ्लाम भी तारीफ के लिए आता है, इजाफत भी तारीफ के लिए आती है, तो अगर अगर अलमियत के होते हुए अलिफ्लाम आए या अलमियत के होते हुए इजाफत आए तो फिर इस सूरत में तो तारीफ है मुआरफ लाजिम आएगी, एक लफ्ज जो पहले ही मारिफा है उसको आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मारिफा, तो तारीफ है मुआरफ तो सही नहीं भाई, वो पहले से ही मारिफा है भाई, लिहाजा जब अलिफ्लाम दाखिल होगा तो उसकी अलमियत जायल हो जाएगी, अलमियत जायल होने के बाद अब अलिफ्लाम की वजह से उसमें तारीफ आ जाएगी, जब आप एक अलम की इजाफत करेंगे तो फिर उसकी अलमियत जायल हो जाएगी, अब इजाफत की वजह से उसके अंदर तारीफ आ जाएगी। बात समझ में आ गई, मालूम हुआ अलिफ्लाम और इजाफत ये अलमियत को खत्म कर देते हैं, जायल कर देते हैं, तो यहां उस अफालु तफजील की बात नहीं हो रही जो अलिफ्लाम और इजाफत के साथ हो, क्योंकि वो तो अलमियत को खत्म कर देते हैं, बल्कि कौन से अफालु तफजील की बात हो रही है जो मीन के साथ इस्तेमाल हो, लेकिन मीन की दो सूरतें, कभी लफ्जों में होता है और कभी मुकद्दर होता है, अगर लफ्जों में हो मीन तो फिर अलमियत खत्म करने के बाद भी यह गैर मुनसरिफ रहेगा, क्योंकि कबल आलमियत भी इसकी वसफियत जाहिर थी मीन की वजह से, और अगर मीन के बगैर था वो अफालु तफजील तो फिर आलमियत के बाद वो बिल इतफाक मुनसरिफ हो जाएगा, क्योंकि कबल आलमियत उसके अंदर वसफियत जाहिर नहीं थी, वो ऐसे ही था जैसे इसमें महज हो, सिफत न हो गई। फिर मैंने आपको यह भी बतलाया था कि वखालफा सीबवैहिल अखफशा, कि इमाम सीबवै हैं उस्ताज और इमाम अखफश उनके शागिर्द हैं भाई, लेकिन मुखालिफत की निस्बत साहिब काफिया ने उस्ताज की तरफ कर दी कि उस्ताज ने मुखालिफत की है अपने शागिर्द की। साहिब जामी ने आपको बतलाया कि अगरचे ये पसंदीदा नहीं कि क्या किया जाए उस्ताद की तरफ मुखालिफत की निस्बत की जाए, लेकिन दरअसल साहिबे काफिया इस नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहते थे कि इमाम अखफश का कौल वो जो पीछे हमने जाब्ता जिक्र किया था उसके उसके मुआफिक है, लिहाजा इमाम अखफश के कौल को असल बना दिया और इमाम सीबवे की तरफ मुखालिफत की निस्बत कर दी कि उन्होंने इनकी मुखालिफत की है। बात समझ में आ गई, अब आगे देखिए भाई, कहते हैं एतबारन लिस्सिफतिल असलियति ऐ इन्नमा खालफ सीबवैहिल अखफश लिअजल एतबारिहिल वस्फियतल असलियता। भाई बात यह चल रही थी कि इमाम सीबवै ने इमाम अखफश की मुखालिफत की है अहमरा जैसे लफ्जों में अलम होने की हालत में, इदा नुकिरा जब इसको नकेरा कर दिया जाए, इसको नकेरा बना दिया जाए। आगे फरमा रहे एतबारन लिस्सिफतिल असलियति, साहिब जामी आपको बतलाएंगे कि यह एतबारन मफूल लहू है भाई, तवज्जो है जी, ये पहले जरा मतन मतन देख लो, एतबारन लिस्सिफतिल असलियति बादत तनकीरी, सिफत असलिया का एतबार करने की वजह से बादत तनकीरी नकिरा बनाने के बाद, इमाम सीबवैन ने इमाम अखफश की मुखालिफत की है अहमरा जैसे लफ्जों में, एतबारन लिस्सिफतिल असलियती, सिफत असलिया का एतबार करने की वजह से, बाद तनकीरी नकिरा बनाने के बाद। तो यहां जो एतबारन आया मतन के अंदर, आपको साहिब जामी बतलाएंगे कि यह मफूल लहू है। मफूल लहू वो मसदर जो माकबल फ़ियल की इल्लत बयान करता है और यह मनसूब होता है। तो एतबारन देखो ये भी मस्तर है और मनसूब है और ये माकबल फ़ियल की इल्लत बयान कर रहा है। इमाम सीबवे ने इमाम अखफश की मुखालिफत की है किस वजह से, एतबारन लिस्सिफतिल असलियती, सिफत असलिया का एतबार करने की वजह से, बादत तनकीर नकिरा बनाने के बाद। बात समझ में आ रही है। तो ये एतबारन क्या है, मफूल लहू। मफूल लहू किसे कहते हैं, वो मस्दर जो माकबल फ़ियल की इल्लत बयान करता है। ज़रबतुहु तादीबन, मैंने उसकी पिटाई की, तादीबन अदब सिखाने के लिए। मालूम हुआ जो पिटाई की गई उसका सबब और उसकी इल्लत क्या थी, अदब सिखाना। तो यहां पर भी इसी तरह है कि इमाम सीबवे ने इमाम अखफश की मुखालिफत की है, उसकी वजह क्या है, कहते हैं एतबारन लिस्सिफतिल असलियती, सिफत असलिया का एतबार करने की वजह से। तो ये एतबारन क्या वाक़े हो रहा है, मफूल लहू, देखो साहिब जामी खुद आपको बतलाएंगे। देखिए भाई, कहते हैं एतबारन लिस्सिफतिल असलियती, सिफत असलिया का एतबार करने की वजह से। इन नमा खालफा सीबवे हिल अखफशा, यानी इमाम सीबवे ने मुखालिफत की है इमाम अखफश की। मतन में क्या आया था, एतबारन, साहिब जामी क्या तफसीर कर रहे हैं, लिअज लेतबार हिल वसफियत अल असलियत। देखा, बतलाना ये चाहते हैं कि एतबारन इल्लत बयान कर रहा है, यानी ये मफूल लहू है। तो कहते हैं आई इन्नमा खालफा सीबवे हिल अखफशा, इमाम सीबवे ने इमाम अखफश की मुखालिफत की है, लि अजली एतबारी ही, ये एतबारी ही कि हा जमीर इमाम सीबवे को राजे, बवजह एतबार करने इमाम सीबवे के, अल वसफियत अल असलियत, वसफियत असली, इस वजह से कि इमाम सीबवे ने वसफियत असलिया का एतबार किया है, बादत तनकीर नकिरा बनाने के बाद। यहां तक बात समझ में आ गई कि साहिब जामी ने एतबारन की तफसीर लिअजलि एतबारी ही के साथ की, बतला दिया कि यह मफूल लहू वाकई हो रहा है। और मफूल लहू ये माकबल फेल की इल्लत बयान करता है, तो ये किस फेल की इल्लत बयान कर रहा है, वो भी साहिब जामी ने साथ ही जिक्र कर दिया। क्या कहा, इन नमा खालफसी बोवहिल अखफशा लिअजलि एतबारी ही, यानी ये जो इमाम सीबवे ने इमाम अखफश की मुखालिफत की है उसकी इल्लत बयान कर रहे हैं साहिब काफिया एतबारन के जरिए। यहां तक बात समझ में आ गई भाई। ऊपर देखिए मतन में आया था वखालफा सीबवे हिल अखफशा, इमाम सीबवे ने इमाम अखफश की मुखालिफत की है। साहिब जामी ने बतलाया था कि इमाम सीबवे उस्ताज हैं और इमाम अखफश उनके शागिर्द हैं, और ये सीबवे ये फाइल है खालफा का और अल अखफश मफ़ूल है। चूंकि इमाम अखफश की बात जाब्ते के मुताबिक है, वो फरमाते हैं वो इसम जिसके अंदर अलमियत मुअसर हो, जब उससे अलमियत को खत्म कर दिया जाए तो वो मुनसरिफ हो जाएगा। तो इमाम अखफश की बात चूंकि जाब्ते के मुआफिक थी, इसलिए उनके कौल को असल बनाया और मुखालिफत की निस्बत किसकी तरफ कर दी, इमाम सीबवे की तरफ, के इमाम सीबवे ने उनकी मुखालिफत की है। तो मालूम हुआ वखालफा सीबवे हिल अखफशा, इसके अंदर सीबवे फाइल है खालफा का और अल अखफशा मफूल है भाई। तो ये साहिब जामी की तकरीर है, जबकि बाज दीगर शारहीन ने यहां और तकरीर की है, उन्होंने मुखालिफत की निस्बत इमाम अखफश की तरफ की है। वजह यह कि इमाम सीबवे उस्ताज हैं और ये मुस्तहसन नहीं, पसंदीदा नहीं कि मुखालिफत की निस्बत उस्ताद की तरफ की जाए कि उस्ताद ने शागिर्द की मुखालिफत की है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि शागिर्द ने उस्ताद की मुखालिफत की है। चुनाचे वो फरमाते हैं कि ये सीबवे ये मफ़ऊल है और अल अखफशु इसको रफा के साथ पढ़ेंगे, ये फाइल है खालफा का भाई। फिर सवाल पैदा होता है कि अगर अल अखफशु ये फाइल है और सीबवे मफूल है तो मफूल को मुकदम क्यों किया, तो वो जिक्र करते हैं वजह यह कि इमाम सीबवे उस्ताद हैं चूंकि, तो इसलिए बतौर अदब के उस्ताद का नाम साहिब काफिया ने मुकदम कर दिया और शागिर्द का नाम उसको मुअख्खर कर दिया, अगरचे वो फाइल है और फेल के बाद फौरन फाइल का दर्जा होता है भाई। तो मुहशी हजरात जो हैं वो तरजीह देते हैं साहिब जामी की तकरीर को। मुहशी हजरात फरमाते हैं कि ये जो आगे आया ना एतबारन लिसफतिल असलियती, साहिब जामी ने जो तकरीर की ये उसकी दलील है भाई। साहिब जामी ने क्या किया, सीबवे को फाइल बनाया और अल अकफश को मफूल बनाया, ये एतबारन लिसफतिल असलिया, ये इबारत उनकी दलील है भाई कि ये सीबवे को क्या बनाएंगे, फाइल बनाएंगे। तो भाई ये किस तरह साहिब जामी की दलील है, तो याद रखो इल्लत बयान करने के लिए अरबी जुबान में लाम इस्तेमाल किया जाता है, यानी लाम तालील के लिए आता है। किसके लिए आता है, अल्लाला युअल्लिलु तालील का माना है इल्लत बयान करना किसी चीज की, किसी चीज की वजह बयान करना, और उसके लिए अरबी जुबान में लाम को वजह किया गया है। जब भी किसी चीज की इल्लत बयान करनी हो तो उसके लिए लाम को इस्तेमाल किया जाता है अरबी जुबान में। तो ज़रबतुहु तादीबन, ये असल में था ज़रबतुहु लितादीबी, असल में क्या था, ज़रबतुहु लितादीबी, मैंने उसकी पिटाई की लितादीबी, अदब सिखाने के लिए। तो अरबी जुबान में इल्लत बयान करने के लिए तालील के लिए जो है लाम इस्तेमाल होता है, और फिर कभी कभार इस लाम को हजफ कर लेते हैं और उस लफ्ज पर नसब पढ़ते हैं, उसको मंसूब कर देते हैं और उसको मफूल लहू कहते हैं। बात समझ में आ रही है, तो इस लाम को फिर कभी हजफ कर लेते हैं, लेकिन उसके हजफ करने के लिए तीन शर्तें हैं, वो तीनों पूरी होंगी तो फिर लाम को हजफ करना और उस लफ्ज़ को मंसूब करके मफूल लहू बनाना जायज होगा। पहली शर्त ये कि वो लफ्ज़ जिस पर लाम दाखिल था वो क्या होना चाहिए, मसदर होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि ये जो जिसको आप मफूल लहू बनाना चाहते हैं और माकबल में जो फेल गुजरा है दोनों का फाइल एक ही जात होनी चाहिए, दोनों का फाइल एक ही जात होनी चाहिए। ये लफ्ज जिसको आप मफूल लहू बनाना चाहते हैं, ये मफूल लहू क्या करता है, माकबल फेल की इल्लत बयान करता है, तो उसको माकबल वाले फेल को कहेंगे फेले मुअल्लल बिही। क्या कहेंगे, फेल मुअल्लल बिही। मैंने आपको बतलाया अल्लाला युअल्लिलु तालील का माना होता है इल्लत बयान करना, तो मुअल्लल वो चीज जिसकी इल्लत बयान की जाए, और फेल मुअल्लल बिही यानी वो फेल की जिसकी इल्लत मफूल लहू के साथ बयान की गई। तो माकबल में जो फेल आया उसको फेल मुअल्लल बिही कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या माना फेल मुअल्लल बिही, वो फेल जिसकी इल्लत आगे मफूल लहू के जरिए बयान की जा रही है। तो उस लाम को हजफ करने और नसब करने की कितनी शर्तें हैं, तीन शर्तें हैं। पहली शर्त यह कि वो मस्तर होना चाहिए, और दूसरी शर्त यह कि वो फेल मुअल्लल बिही और मफूल लहू इन दोनों का फाइल एक जात होनी चाहिए, और तीसरी शर्त यह कि दोनों का जमाना भी एक होना चाहिए, दोनों का जमाना भी। फिर दोहराएं, पहली शर्त क्या, पहली शर्त यह कि वो जिस पर लाम दाखिल है जिसको आप मफूल लहू बनाना चाहते हैं वो मस्तर होना चाहिए, दूसरी शर्त क्या कि फेले मुअल्लल बिही और इस मफूल लहू दोनों का फाइल एक ही जात होनी चाहिए, और तीसरी शर्त यह कि दोनों का जमाना भी एक हो। जैसे ज़रबतुहु तादीबन, यूं कहो ज़रबा ज़ैदुन तादीबन, ज़रबा ज़ैदुन तादीबन, जैद ने ज़र्ब लगाई, जैद ने पिटाई की अदब सिखाने के लिए। तो तादीबन इस वक्त तो मंसूब है लेकिन असल में यह मजरूर था, इस पर लाम जारा दाखिल था क्योंकि इल्लत बयान करने के लिए अरबी जुबान में लाम इस्तेमाल होता है। तो ज़रबा ज़ैदुन तादीबन यह असल में क्या था, ज़रबा ज़ैदुन लितादीबी। अब लाम को हजफ करके आप तादीबन को मंसूब करना चाहते हैं तो वो तीन शर्तें पूरी होंगी तो आप मंसूब कर सकते हैं, वरना नहीं। पहली शर्त क्या थी कि वो लफ्ज क्या हो, मस्दर होना चाहिए, और तादीब भी क्या है, मस्दर, पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त क्या थी कि वो फेले मुअल्लल बिही और इस मफूल लहू दोनों का फाइल एक ही जात हो। ज़रबा ज़ैदुन तादीबन, यह जरब लगाने वाला कौन, जैद, और यह अदब सिखाने वाला भी कौन, زید, معلوم ہوا دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہے. دوسری شرط بھی پوری. تیسری شرط کیا ہے کہ دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. دیکھو ضرب اور تادیب دونوں کا زمانہ بھی ایک ہی ہے. جو جو ضرب لگتی جا رہی ہے وہ ادب سیکھتا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ضرب ہے تو سبب اور تادیب ہے مسبب. ضرب لگے گی تو وہ ادب سیکھے گا. تو ضرب مقدم ہے ذات کے اعتبار سے. ضرب سبب ہے اور تادیب کیا ہے؟ مسبب ہے. اور سبب پہلے ہوتا ہے اور مسبب بعد میں. لیکن یہاں زمانے کے اعتبار سے ضرب پہلے نہیں کہ ضرب کا زمانہ پہلے ہے اور تادیب کا زمانہ بعد میں ہے, بلکہ زمانہ دونوں کا ایک ہے. ضرب صرف اپنی ذات کے اعتبار سے مقدم ہے, زمانے کے اعتبار سے مقدم نہیں. جس زمانے میں جوں جوں ضرب لگتی جا رہی ہے اسی زمانے میں وہ ادب بھی سیکھتا جا رہا ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے چابی گھمائیں گے تو تالا کھلے گا. چابی کا گھمانا سبب اور تالے کا کھلنا مسبب, لیکن دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے. چابی کا گھمانا ذات کے اعتبار سے تو تالے کے کھلنے پر مقدم ہے, زمانے کے اعتبار سے مقدم نہیں ہے. بلکہ جوں جوں چابی گھومتی جا رہی ہے ساتھ ساتھ تالا کھلتا جا رہا ہے. تو چابی گھمانے کو صرف تقدم ذاتی حاصل ہے, تقدم زمانی حاصل نہیں. یہ اسی طرح ہے جیسے سورج نکلتا ہے تو دن ہو جاتا ہے. سورج کا نکلنا ہے سبب اور دن کا ہونا ہے مسبب, لیکن سورج کا نکلنا اور دن کا ہونا دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے. تو سورج کے نکلنے کو صرف ذات کے اعتبار سے تقدم حاصل ہے, زمانے کے اعتبار سے تقدم حاصل نہیں. جو جو سورج نکلتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ دن ہوتا جا رہا ہے. تو یہاں پر بھی ضرب زیدن تادیبن, ضرب اور تادیب دونوں کا زمانہ ایک ہے. ذات کے اعتبار سے ضرب مقدم ہے لیکن زمانے کے اعتبار سے مقدم نہیں, دونوں کا زمانہ ایک ہے. تو تینوں شرطیں پوری ہو گئیں. لہذا ضرب زیدن للتادیبی, اب لام کو حذف کر دیں گے اور تادیبن کو منصوب پڑھیں گے تو کیا بن گیا؟ ضرب زیدن تادیبن. دیکھو کلام مختصر ہو گیا, لام ایک حرف تھا اس کو حذف کر دیا گیا. تو کسی لفظ کو مفعول لہو بنانا ہو اور لام کو حذف کر کے اس پر نصب پڑھنا ہو تو کتنی شرطیں ہیں؟ تین شرطیں. پہلی شرط کیا؟ کہ وہ مصدر ہو. دوسری شرط یہ کہ فعل معلل بھی اور اس مفعول لہو دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہو. اور تیسری شرط یہ کہ دونوں کا زمانہ ایک ہی ہونا چاہیے. یہاں پر بھی دیکھیے بھائی, اعتباراً لصفت الاصلیتی. اعتباراً یہ مفعول لہو ہے, کس کے لیے؟ خالف فعل کے لیے. یہ اس کی علت بیان کر رہا ہے. اور دیکھو یہاں تینوں شرطیں پوری ہیں. پہلی شرط کیا؟ کہ مصدر ہو. اعتبار بھی کیا ہے؟ مصدر ہے. دوسری شرط کیا؟ کہ فعل معلل بھی اور مفعول لہو دونوں کا فاعل ایک ہونا چاہیے. فعل معلل بھی کا فاعل کون, کس کو بنایا؟ صاحب جامی نے, سی بوے کو. اور صفت اصلیہ کا اعتبار تنکیر کے بعد کون کرتے ہیں؟ امام سیبوے. معلوم ہوا یہ اعتبار تو امام سیبوے کرتے ہیں. جب اعتبار کے فائل امام سیبوے ہیں تو خالفہ کا فائل بھی کس کو بنانا پڑے گا؟ سیبوے کو. یہ ہے دلیل ان کی بھائی. اور دونوں کا زمانہ بھی ایک ہے. جس زمانے میں مخالفت کی ہے اس زمانے میں اعتبار کیا ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو محشی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اعتباراً دلیل ہے صاحب جامی کی کہ خالفہ کا اسناد سیبوے کی طرف کیا جائے گا, اخفش کی طرف نہیں. کیونکہ اگر خالفہ کا اسناد اخفش کی طرف کر دیں پھر تو خالفہ کا فاعل ہوا اخفش, اور اعتباراً کا فاعل کون ہے؟ اعتبار کس نے کیا ہے؟ امام سیبوے نے. پھر تو اعتباراً کو مفعول لہو بنانا ٹھیک ہی نہیں. پھر تو اس کو لام کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے تھا, بغیر لام کے نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ یاد رکھنا, وہ دوسرے علماء جنہوں نے خالفہ کا اسناد اخفش کی طرف کیا, اخفش کو فاعل بنایا, وہ پھر اس اعتباراً کو اس کو وہ حال بناتے ہیں سیبوے سے, یا اس کو وہ پھر مفعول مطلق بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ مفعول مطلق بناتے ہیں. حال کیسے بنے گا؟ حال سیبوے سے بنایا, اور حال کا حمل کس پر ہوتا ہے؟ ذوالحال پر. اور ذوالحال تو سیبوے ذات ہے اور اعتباراً تو مصدر ہے, اور مصدر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ مصدر کبھی اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں اعتبار بمانے معتبر کے ہے. तो वह खालफा सीबवै, तो इमाम सीबवै की मुखालिफत की है इमाम अखफश ने मुअतबिरन, इस हाल में कि इमाम सीबे एतबार करने वाले हैं, लिसिफत असलियत, किसका सिफत असली, तो वो इसको हाल बनाते हैं या इसको वो मफूले मुतलक बनाते हैं। मफूले मुतलक किसे कहते हैं? वो मस्दर जो माकबल फेल के माना में हो, जरब तू जरबन, ये जरबन क्या है? मफूले मुतलक है। तो यहां इस एतबारन के लिए वो फेल महजूफ निकाल लेते हैं, एतबारा सीबवे एतबारन, इमाम सीबवे ने एतबार किया है। बात समझ में आ गई? या आप इस एतबारन को खालफा से बराह रास्त मफूले मुतलक भी बना सकते हैं। किससे? खालफा से मफूले मुतलक बना सकते हैं, कोई एतबार निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि खालफा से इसको मफूले मुतलक बना लो। भाई खालफा से कैसे मफूले मुतलक बनेगा? मफूले मुतलक तो वो मस्दर होता है जो माकबल फेल के माना में हो, तो यहां तो माकबल में फेल खालफा है, खालफा का माना और एतबार का माना, और ये उसे मफूले मुतलक कैसे बनेगा? कहते हैं भाई वो ये जो वसीयत असलिया का एतबार करना ये एक नौ की मुखालफत ही तो है। वसफियत असलिया का एतबार किया है किसने? इमाम सीबवे ने, तो ये एतबार करना क्या है? मुखालिफत ही तो है, मुखालिफत की एक नौ है, एक किस्म है। तो चाहे खालफा से ही इसको मफूले मुतलक बना दें, चाहे इसके लिए एतबारा फेल महजूफ निकाल लें। बात समझ में आ गई? तो बहरहाल साहिब जामी की तकरीर ज्यादा आसान और वाजह है भाई, एतबारन को मफूल लहू बना दें और मुखालिफत की नस्बत किसकी तरफ कर दें? इमाम सीबवे की तरफ, और वो भी अगरचे नापसंदीदा है लेकिन एक नुक्ते की वजह से वो इस्नाद इमाम सीबवे की तरफ किया गया, और वो नुक्ता क्या था? कि इमाम अखफश का कौल जाब्ते के मुताबिक है और इमाम सीबवे का कौल इस मस्कूरा जाब्ते के खिलाफ है। इस नुक्ते पर मुतनब्बिह करने के लिए मुखालिफत की निस्बत इमाम सीबवे की तरफ की साहिब काफिया ने। बात समझ में आ गई? देखिए भाई अब किताब पर कहते हैं, एतबारन लिसिफतिल असलियती, बवजह एतबार करने सिफत असलिया का, इन्नमा खालफा सीबवैहिल अखफशा, इमाम सीबवै ने मुखालिफत की है इमाम अखफश की, लियजली एतबारी ही, बवजह एतबार करने इमाम सीबवै के, अलवसफियत अल असलियता, वसफियत असलिया का, इन इमाम सीबवै ने वसफियत असलिया का एतबार किया है, बादत तनकीरी नकिरा बनाने के बाद, फैन नहू लम्मा जालतिल आलमियतु बित तनकीरी, जी अब आगे सिर्फ तर्जमा है भाई तवज्जो से सुने, फैन नहू लम्मा जालतिल आलमियतु बित तनकीरी, इसलिए क्योंकि जब आलमियत जायल हो गई बित तनकीरी नकिरा बनाने की वजह से, लम यब कफी ही मानिउन, तो उस लफ्ज के अंदर कोई मानि बाकी न रहा, मिन एतबारिल वसफियती, वसफियत का एतबार करने से, वसफियत के एतबार से अब कोई मानिया चीज ना रही। तवज्जो है? अलमियत खत्म कर दी, अहमरा जैसे लफ्ज से क्या किया? अहमरा अलमियत से कबल भी गैर मुनसरिफ था, और एक सबब क्या था? वसफ। फिर जब अलम बनाया तो वसफियत खत्म हो गई, अब भी गैर मुनसरिफ। फिर उसके बाद जब आलमियत खत्म की तो इमाम सीबवे के नजदीक अब फिर उस वसफियत असलिया का एतबार करेंगे, क्योंकि अब मान्या कोई नहीं, पहले मान्या क्या था? अलमियत मान्या थी, अब तो कोई मान्या नहीं। यह माना है कि जब अलमियत जायल हो गई तनकीर की वजह से, तो लम यबका फीही मान्यउम मिन एतबारिल वसफियती, तो उसके अंदर वसफियत के एतबार से कोई मान्या बाकी न रहा, फातबरहा, तो इमाम सीबवे ने उस वसफियत का एतबार किया, वजालहु गैर मुनसरिफिन, और उसको गैर मुनसरिफ करार दिया, लिसिफतिल असलियति व सबबिन आखरा, सिफत असलिया और एक दूसरे सबब की वजह से, एक तो वसफियत असलिया है और साथ एक दूसरा सबब भी होगा, जैसे अहमरा, अहमरा के अंदर अलमियत के बाद एक वसफियत असलिया का एतबार करेंगे और दूसरा सबब क्या? वजन फेल। और सकराना, सकरानों के अंदर, इसके अंदर अलमियत के बाद एक वसफियत असलिया का एतबार करेंगे और दूसरा अलिफनून मजीदतान। तो कहते हैं वजअलहु गैर मुनसरिफिन लिसिफतिल असलियति व सबबिन आखरा, और उसको गैर मुनसरिफ करार दिया सिफत असलिया की वजह से और एक दूसरे सबब की वजह से, का वजनिल फिअली वल अलिफ वन नूनिल मजीदतैनी, जैसे कि वजन फेल है और अलिफ नून मजीदतैन है, बात समझ में आ गई। फइन कुलता, यहां से अब एक एतराज और उसका जवाब जिक्र करेंगे। एतराज ये, कोई मोतरिज एतराज करता है कि इमाम सीबवे ने अलमियत के बाद वसफियत असलिया का एतबार किया। भाई ये वसफियत असलिया का एतबार क्यों किया? क्योंकि कोई मान्या नहीं था, पहले अलमियत मान्या थी लिहाजा वसफियत का एतबार नहीं कर सकते थे। अब अलमियत खत्म हो गई तो अब मान्या ना रहा। कहते हैं भाई अगर मान्या नहीं रहा तो कोई सबब और कोई बाइस भी तो नहीं है कि उसका एतबार किया जाए। सिर्फ मान्या का ना होना तो काफी नहीं है, बल्कि कोई बाइस भी होना चाहिए, कि मुक्तजी भी होना चाहिए जो उस तकाजा करे कि इसके अंदर किसका एतबार करो, वसफियत असली। तवज्जो है, अहमारा का लफ्ज इससे अलमियत खत्म कर दी। अब वसफियत के एतबार से कोई चीज अब मान्या मौजूद नहीं, मान्या नहीं है तो कोई बाइस भी तो नहीं है, यानी कोई दाई और कोई मुक्तजी भी तो नहीं है जो तकाजा कर रहा हो इसमें क्या करो, वसफियत का एतबार करो। तो कोई अगर मान्या नहीं है तो कोई बाइस और दाई और मुक्तजी भी नहीं है, तो फिर क्यों इमाम सीबवे ने इसके अंदर वसफियत असलिया का एतबार किया और इसकी वजह से इसम को अपनी असल से निकालकर यानी मुनसरिफ होने से निकालकर गैर मुनसरिफ करार दिया। इश्काल समझ में आ रहा है। फ इन कुलता कमा अन्नहु ला मानिअ मिन इतिबारिल वसफियतिल असलियति, कि जैसे कि कोई मान्या नहीं है वसफियत असलिया का एतबार करने से, जैसे वसफियत असलिया का एतबार करने से कोई मान्या चीज नहीं है, तो ला बाइस अला एतबारिहा ऐज़न, तो इसके एतबार पर कोई बाइस भी नहीं है, कोई मुक्तजी चीज भी नहीं है जो तकाजा कर रही हो कि क्या करो, वसफियत असलिया का एतबार करो। फलीमा अतबारहा, तो फिर इमाम सीबवे ने क्यों वसफियत असलिया का एतबार किया? वज़हब इला मा हुआ खिलाफुल असली, और गए उस बात की तरफ जो खिलाफुल असल है। आनी मन असरफी, यानी कि मन सर्फ। तो कीला जवाब दे रहे हैं, कहते हैं कीला अल बाइसु अला एतबारी हम तिनाउ अस्वद व अरकमा मा ज़वालिल वसफियत अनहुमा हीनाइज़िन। तो कहते हैं जवाब इसका यह दिया गया कि वो चीज जो बाइस बनी कि इमाम सीबवे इसमें वसफियत असलिया का एतबार करें, वो अस्वद और अरकम का गैर मुनसरिफ होना है। अस्वद और अरकम, इनसे वसफियत जायल हो चुकी, अब ये अस्वद काले रंग के सांप का इसम बन चुका और अरकम चतकुबरे रंग के सांप का इसम बन चुका, तो इनसे वसफियत जायल हो चुकी है, लेकिन फिर भी अरब इनको गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं। मालूम हुआ इसके अंदर वो वसफियत असलिया का एतबार करते हैं। क्या करते हैं? वसफियत असलिया का एतबार करते हैं। तो जब अस्वद और अरकम में जवाल वसफियत के बाद भी उस वसफियत का एतबार किया गया, तो अहमर के अंदर भी अलमियत की वजह से जो वसफियत जायल हो गई थी, अब जवाल वसफियत के बाद भी क्या करना चाहिए, जब आलमियत खत्म हो उस वसफियत ज़ाइला का एतबार करना चाहिए। तो इमाम सीबवे अहमरा जैसे लफ्जों को कियास करते हैं अस्वद और अरकम पर, और अस्वद और अरकम में तो बिल इतफाक जो है जवाल के बाद भी वसफियत का एतबार किया गया है, तो अहमर में भी क्या करना चाहिए, जवाल के बाद भी वसफियत का एतबार करना चाहिए। जवाब समझ में आ गया। कीला, तो कहा गया है, यानी जवाब के अंदर कहा गया है कि अलबाइसु अला एतबारिहा, कि वो चीज जो बाइस है इस वसवियत का एतबार करने पर, वो इम्तिनाउ अस्वद व अरकमा, वो अस्वद और अरकम का मुमतनिया होना है सर्फ से, यानी अस्वद और अरकम का गैर मुनसरिफ होना है। मा ज़वालिल वसवियत अनहुमा हीनइज़िन, बावजूद इसके कि वसवियत जायल हो चुकी है इन दोनों से, हीनइज़िन उस वक्त वसफियत जायल हो चुकी है। अब तो ये सांपों के नाम बन चुके हैं भाई, वसफियत तो जायल हो चुकी है, फिर भी जवाल वसफियत के बाद भी उस वसफियत का एतबार किया जा रहा है, तो अहमर के अंदर भी जवाल वसफियत के बाद उसका एतबार करना चाहिए। आगे साहिब जामी फरमाते हैं वफीही बहसुन, और इसके अंदर बहस है। इसके अंदर इश्काल क्या हुआ था? इश्काल यह हुआ कि वसफियत जब एक दफा जायल हो चुकी है तो इमाम सीबवे उसका एतबार क्यों कर रहे हैं? अगर मान्या कोई नहीं है तो कोई दाई भी तो कोई नहीं है कि उसका एतबार किया जाए। तो उसका जवाब किसी ने क्या दिया कि वो किस पर कयास करते हैं, अस्वद और अरकम पर कयास करते हैं, उसके अंदर जवाल के बाद भी वसफियत का एतबार किया गया, तो यहां भी जवाल के बाद वसफियत का एतबार करना चाहिए। तो साहिब जामी अब इस जवाब को रद्द करेंगे और बतलाएंगे कि नहीं भाई, अस्वद और अरकम और अहमर दोनों में फर्क है भाई, अस्वद और अरकम में वसफियत पूरी तरह जायल नहीं हुई, वसफियत का असर अभी भी मौजूद है, इसलिए क्योंकि अस्वद हर चीज का नाम नहीं बना, काले रंग के सांप का नाम बना, तो उसमें देखो काला रंग अभी भी है, अस्वद भी किसके लिए वजह था, काले रंग की चीजों के लिए, और ये सांप भी कैसा है, काला है, तो जब इस सांप का नाम अस्वद बन गया तो वसफियत पूरे तौर पर खत्म नहीं हुई, वसफियत का असर अभी भी बाकी है। इसी तरह अरकम हर उस चीज को कहते थे जिसमें काला और सफेद दोनों रंग हो, और अब ये सांप का इसम बन गया, लेकिन हर सांप का इसम नहीं बना, उस सांप का इसम बना है जिसमें सफेद रंग भी होता है और काला रंग भी होता है, तो अभी भी इस दोनों के अंदर वसफियत का असर मौजूद है। जबकि अहमर जब किसी का नाम रखा गया उससे तो वसफियत बिल्कुल लिया खत्म हो गई, पूरे तौर पर खत्म हो गई, तो दोनों में फर्क है। क्या फर्क है कि अस्वद और अरकम जब सांपों के नाम बन गए तब भी वसफियत पूरे तौर पर खत्म नहीं हुई, अभी भी वसफियत का असर, वसफियत की बू इनके अंदर बाकी है, क्योंकि अस्वद काले सांप को कहते हैं हर सांप को नहीं, और अरकम चतकुबरे सांप को कहते हैं हर सांप को नहीं, तो इनके अंदर वसफियत का असर अभी भी बाकी है। और जबकि अहमर जब किसी का नाम रखा जाए, अलम रखा जाए, तो अलम के अंदर तो माना का लिहाज नहीं होता, तवज्जो है, तो वहां से वसफियत बिल्कुलिया खत्म हो गई, पूरे तौर पर खत्म हो गई, तो दोनों में फर्क हो गया, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वफी ही बहसुन, और इसके अंदर बहस है, लिअन्नल वसफियत लम तजुल अनहुमा बिल्कुलियति, इसलिए क्योंकि वसफियत जो है लम तजुल अनहुमा, वो इन दोनों से यानी अस्वद और अरकम से जाइल नहीं हुई, जाला या जुलू का माना जाइल होना, तो लम तजुल पढ़ें इसको भाई, लम तजुल, लिअन्नल वसफियत लम तजुल अनहुमा, इसलिए क्योंकि वसफियत जाइल नहीं हुई अस्वद और अरकम से बिल्कुलियति पूरे तौर पर, बल बकिया फीहिमा शाइबतुम मिनल वसफियति, शाइबा कहते हैं आमेजिश को भाई, मिलावट भाई, बल बकिया फीहिमा शाइबतुम मिनल वसफियति, बल्कि इन दोनों के अंदर वसफियत की आमेजिश बाकी है, इन दोनों में वसफियत की आमेजिश बाकी है, यूं को असर बाकी है, बल बकिया फीहिमा शाइबतुम मिनल वसफियति, बल्कि इन दोनों में वसफियत का असर बाकी है, लिअन्नल अस्वदा, इसलिए क्योंकि अस्वद जो है इस्मुन लिलहयति सौदाई, वो नाम है काले सांप का, वल अरकम उस्मुन लिलहयति लती फीहा सवादुन व बयाजुन, और अरकम नाम है उस सांप का जिसके अंदर स्याही और सफेदी हो, वफीहिमा शम्मतुम मिनल वसफियति, और इन दोनों के अंदर वसफियत की बू है, शम्मतुन कहते हैं बू को भाई, मुराद वही असर है, वफीहिमा शम्मतुम मिनल वसफियति, और इन दोनों में वसफियत का असर है, उसकी बू है, फला यल्जमु मिन एतिबारिल वसफियति फीहिमा, तो इन दोनों के अंदर वसफियत का एतबार करने से लाजिम नहीं आता, एतबार हुआ फी अहमरा बादत तनकीर, कि इस वसफियत का एतबार किया जाए अहमरा के अंदर भी तनकीर के बाद, क्योंकि अस्वद और अरकम में तो वसफियत का असर अभी भी बाकी है और अहमरा में तो वसफियत का असर बिल्कुल बाकी नहीं, तो लिहाजा अस्वद और अरकम के अंदर वसफियत का एतबार करने का यह मतलब नहीं है कि अब अहमरा के अंदर भी वसफियत का एतबार किया जाए, क्योंकि दोनों में फर्क है, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं फला यल्जमु मिन एतिबारिल वसफियति फीहिमा, पस लाजिम नहीं आता अस्वद और अरकम के अंदर वसफियत का एतबार करने से, एतबार हुआ फी अहमरा बाद तनकीर, कि इस वसफियत का एतबार किया जाए अहमरा के अंदर भी तनकीर के बाद, लिअन्नहा कद जालत बिल्कुलियति, इसलिए क्योंकि अहमरा के अंदर वस्फियत जो है कद जालत बिल्कुलियत, ये पूरे तौर पर जायल हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, इसका कोई असर भी बाकी ना रहा, जबकि अस्वद और अरकम में वस्फियत का असर बाकी था। वह अमल अखफश, और बाकी इमाम अखफश जो है फजहब इला, पस वो इस बात की तरफ गए हैं कि अन्नहु मुनसरिफ, उनकी ये अहमर जैसे अल्फाज आलमियत के बाद जब इनको नकेरा बना दिया जाए तो ये मुनसरिफ हैं। फ़इन्नल वस्फियत कद ज़ालत बिल आलमियती, इसलिए क्योंकि जो वस्फियत है वो आलमियत की वजह से ज़ाइल हो चुकी है। वल आलमियत बि तनकीरी, और आलमियत जो है वो तनकीर की वजह से ज़ाइल हो गई। अहमरा गैर मुनसरिफ था, इसमें वस्फियत थी आलमियत से पहले, फिर जब आलम बनाया तो वस्फियत क्या हो गई, ज़ाइल। फिर उसके बाद आलमियत आपने खत्म की तो आलमियत भी क्या हो गई, ज़ाइल। अब दोबारा वस्फियत का एतबार नहीं करेंगे और अब लफ्ज मुनसरिफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई। कहते हैं फ़इन्नल वस्फियत कद ज़ालत बिल आलमियती, इसलिए क्योंकि वस्फियत जो है वो तहकीक आलमियत की वजह से ज़ाइल हो गई। वल आलमियत बि तनकीरी, और आलमियत जो है वो नकिरा बनाने की वजह से ज़ाइल हो गई। वह ज़ाइलु ला युअतबरु मिन गैरि ज़रूरतिन, और वो जो ज़ाइल हो जाए खत्म हो जाए उसका एतबार नहीं किया जाता, मिन गैरि ज़रूरतिन बगैर जरूरत के। फलम यबका फीहि इल्ला सबबुन वाहिदुन, बस बाकी नहीं रहा इसके अंदर मगर एक ही सबब। इस अहमरा में अब आलमियत के बाद, आलमियत खत्म करने के बाद अब इसमें एक ही सबब है, हुआ वज़नुल फ़िअली अल अलिफ व नून, वो वज़न फ़ेल और अलिफ नून है, वज़न फ़ेल। और अहमरा में क्या रह गया, सिर्फ वज़न फ़ेल बाकी रह गया, और सकराना के अंदर सिर्फ अलिफ नून रह गए, आलमियत और वस्फियत दोनों खत्म हो चुके। ये माना है फलम यब कफी इल्ला सबबु वाहिदुन हुआ वज़नुल फ़िअल वल अलिफ व नून, तो बाकी ना रहा इसके अंदर मगर एक ही सबब, और वो वज़न फ़िअल और अलिफ नून मज़ीदतैन हैं। वहाज़ल क़ौलु अज़हरु, और ये कौल ज्यादा जाहिर है, इमाम अखफश का कौल ज्यादा जाहिर है, क्योंकि एक चीज जब पूरे तौर पर ज़ाइल हो चुकी है तो अब उसको मुअस्सिर नहीं होना चाहिए। अस्वद और अरकम में वस्फियत पूरे तौर पर ज़ाइल नहीं हुई, और अहमर और सकराना जब इनको आलम बनाया गया तो इनसे आलमियत पूरे तौर पर क्या हो गई, ज़ाइल हो गई। जब एक चीज पूरे तौर पर ज़ाइल हो जाए फिर दोबारा उसको मुअस्सिर नहीं होना चाहिए। तो इमाम अखफश का कौल ज्यादा जाहिर है, वो आलमियत को खत्म करने के बाद उस वस्फियत को मुअस्सिर नहीं बनाते, जबकि इमाम सीवे फिर भी उसको मुअस्सिर बनाते हैं। बात समझ में आ गई। तो हासिल कलाम ये कि इमाम सीवे के नजदीक अहमरा जैसे अल्फाज जब उनसे आलमियत खत्म की जाए तो वो फिर भी गैर मुनसरिफ रहेंगे, वो इसमें वस्फियत असलिया का एतबार करते हैं तनकीर के बाद भी, इसलिए क्योंकि आलमियत के दौरान तो आलमियत मान्य थी, हम वस्फियत असलिया का एतबार नहीं कर सकते थे। जब आलमियत खत्म हो गई तो अब मान्य ना रहा, लिहाजा अब किसका एतबार करना चाहिए, वस्फियत असलिया का एतबार करना चाहिए। फिर इस पर एतराज हुआ कि जब अहमरा को नकेरा बना दिया गया तो अगर इस वक्त वस्फियत के लिए कोई मान्य नहीं मौजूद तो कोई बाइस भी तो मौजूद नहीं है, किस वजह से इमाम सीवे ने इसके अंदर वस्फियत का एतबार किया और उसकी वजह से इसम को उसकी असल से निकालकर गैर मुनसरिफ करार दे दिया। तो उसका जवाब दिया कि भाई दरअसल उन्होंने इसको कयास किया है अस्वद और अरकम पर, अस्वद और अरकम के अंदर वस्फियत जायल हो गई थी लेकिन फिर भी उसके अंदर उस वस्फियत असलिया का एतबार किया गया, और अस्वद और अरकम दोनों गैर मुनसरिफ हैं अरबी जुबान में। तो साहिब जामी ने वफी ही बहसुन के जरिए फिर इस बात को रद्द किया कि नहीं भाई, अहमर को अस्वद और अरकम पर कयास नहीं किया जा सकता, अस्वद और अरकम जब इन पर गलबे इस्मियत आ गया फिर भी इनके अंदर वस्फियत का कुछ ना कुछ असर मौजूद है, क्योंकि अस्वद किसी और चीज को नहीं कहते, काले रंग के सांप को कहते हैं तो देखो वो भी काला ही है, उसमें भी काला रंग है, और अरकम किसी और चीज का नाम नहीं रखा बल्कि चतकुबरे सांप का नाम रखा भाई, तो उसके अंदर भी सफेद और काला दोनों रंग मौजूद हैं। तो मालूम हुआ अस्वद और अरकम जब इन पर गलबे इस्मियत आ गया तो भी इनके अंदर वस्फियत वाला असर अभी भी मौजूद है, जबकि अहमर जब इसको अलम बनाया गया तो अलम के अंदर माना मलहूज नहीं होता, तो इससे वस्फियत पूरे तौर पर खत्म हो गई। तो अस्वद और अरकम से वसफियत पूरे तौर पर खत्म नहीं और अहमर जैसे लफ्जों से वसफियत पूरे तौर पर खत्म है, तो लिहाजा अहमर जैसे लफ्जों को अस्वद और अरकम पर कयास करना सही नहीं। जो चीज पूरे तौर पर जायल हो चुकी है उसका फिर दोबारा एतबार नहीं करना चाहिए और उसको मुअस्सिर नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए साहिब जामी ने इमाम अखफश के कौल को ज्यादा जाहिर करार दिया। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।